izzat sever. Muskurahat khushi se badhkar, taluq rishte se badhkar, kyunki Indus hospital se badhkar apni zakat dijiye pehle se badhkar.
फैशन पाकिस्तान लाउंज लेकर आ रहे हैं मिसिसागा में एक रोजा मल्टी डिजाइनर ईद एग्जीबिशन 24. 12 पाकिस्तानी डिजाइनर्स के लेटेस्ट एंड यूनिक आर्टिकल्स जो ईद पर बनाएंगे आपको सबसे मुनफरिद. इतवार 17 मार्च दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक. प्लीज डू कम ओवर हिल्टन गार्डन इन 1870 मेडिसन बुलेवार्ड मिसिसागा. डोंट मिस इट.
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक. ऑल द सॉल्यूशन पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा.
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अपटू 80%. मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं. पुरसकून जिंदगी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन. अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान. 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम. हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें. रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से. नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659. License
number 10530. Tired of paying transfer fees to send money abroad? Over time they can add up to more than $100. But $100 goes a long way. That's a month of groceries in the Philippines. Or 60 liters of gas in India. So, send all the love with a $0 CIBC transfer fee, always. When you use CIBC Global Money Transfer, visit cibc.com/transfer. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. CIBC. Ambitions made real.
सामान्य नाजरी वेलकम बैक अगेन. एंड 5:02:20 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और साहब आपको लिए चलता हूं मैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत आपकी पते की बात करेंगे. जनाब फजल वदूद साहब इंश्योर प्रो से इनका ताल्लुक है. 9056075000 इनका फोन नंबर है. फजल वदूद साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. सर कैसे हैं आप
जी? वालेकुम अस्सलाम. मैं खैरियत से, उम्मीद है आप भी और हमारे बहन भाई जो सुन रहे हैं सब खैरियत वाफियत से होंगे.
सबसे पहले तो 770 की पूरी मैनेजमेंट और हमारी तरफ से साहब आपको आपकी फैमिली को रमजान मुबारक और अल्लाह ताला से दुआएं हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए.
आमीन सुम्मा आमीन. आपको भी और तमाम बहन भाई जो सुन रहे हैं और जो रमजान की जो है डेफिनेटली बरकत हमें समेटने का अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मौका दे और दुआओं में हमें दरख्वास्त है कि याद रखिएगा. थैंक यू.
अच्छा अब ये बात यहां से शुरू करते हैं हम कि हम तो लोगों को बताते रहे हैं आप कितने सालों से हमारे रेडियो पे आते हैं टीवी पे आते हैं कि भाई इंश्योरेंस 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 एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट. मगर फिर भी कई लोग जो है उसको सुनते भी हैं समझते भी हैं मगर फिर भी वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे. किस तरीके से उनको बताएंगे हम कि क्या इनिशिएटिव लें आपको और किस तरीके से आप कहें?
देखें सर बात यह है कि इनिशिएटिव हमने पहले तो सोचना यह है कि लेना क्यों है जी. मैं इसको इस तरह सोचूंगा कि मैं इनिशिएटिव क्यों लूं. आपने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आज इसको स्टार्ट लिया. थैंक यू फॉर दैट. देखें सर मैं इनिशिएटिव लेने की वजह सिर्फ ये समझता हूं कि घर में एक अदद बीवी और दो तीन बच्चे हैं और अभी उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है. मीनिंग ये कि मेरे पास मॉर्गेजेस भी हैं उनकी एजुकेशन बच्चों की उनके भी कमिटमेंट्स मेरे पास हैं और अपने लिए भी एक डिग्निटी के साथ एक रीजनेबल लाइफ चाहता हूं. और इसीलिए मैं अपने मुल्क को छोड़ के इधर आया और मेरा ख्याल है कि तमाम बहन भाई जो हमें सुनते हैं उनका भी मेजर मोटिव हिजरत का कंट्री अपने इस कनाडा में आके बसने का वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। अब अगर सिस्टम यही है तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम हर रोज उठें, काम करें, अपने बिल्स पे करें। मगर इसके साथ साथ ये तो है विशफुल थिंकिंग के मैं हमेशा ही वर्क हॉर्स बना रहूंगा और काम करता रहूंगा और मेरे सुनने वाले जितने भी हमें आज सुन रहे हैं वो भी उनके लिए दुआ भी है, लेकिन ये है कि ये विशफुल थिंकिंग है कि हमेशा ही फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और जिंदगी भी धोखा नहीं देगी। लेकिन जब आप एक्चुअल नंबर्स देखते हैं तो हमेशा हम लोग ये बात करते रहते हैं कि बिफोर रीचिंग एज 65 वो नंबर है कि एटलीस्ट एज 60 तक लोग काम करना चाहते हैं। बल्कि इस वक्त मेरे सामने एक इंश्योरेंस मैनुअल खुला हुआ है, अब वो 60 को बढ़ा के 70 की बात कर रहे हैं साहब। तो अगर हम 70 साल तक, क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि 65 पे रिटायर होना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा, तो लोगों को काम करना है। तो अगर काम करना है, क्यों करना है, हमारी फैमिलीज की जो हमारे ऊपर कमिटमेंट है, और इसीलिए मैं कहता हूँ
चॉइस नहीं है ना सर,
चॉइस कोई नहीं है। बड़ा सही लफ्ज आपने फरमाया और चूज किया। अब देखें जी, जब इंश्योरेंस इसीलिए चॉइस नहीं है और हमने अपने बिल्स पे करने हैं, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, तो हमें इसकी जरूरत है। अच्छा, अब अक्सर हमें ये ख्याल होता है कि साहब ये बहुत महंगी है, तो बात यह है कि इस वक्त मैं आपको, हम लाइफ की बात करते रहते हैं कि मिलियन डॉलर की कवरेज जो है आजकल, घर लेते हैं मॉर्गेज पता ही नहीं चलता 7-8 लाख की, मिलियन डॉलर की मॉर्गेज बड़े आराम से है। तो अगर वो मिलियन डॉलर की मॉर्गेज 100 डॉलर तक में आ जाए तो कोई मेरा नहीं ख्याल के क्यों ना ली जाए। इट वेरीज ऑफ कोर्स हेल्थ के साथ, स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग उसमें सारी चीजें हैं। इस वक्त मैं थोड़ा सा अगर डिसेबिलिटी की बात करूं, हमारे बहुत से दोस्त ट्रकिंग में हैं, टैक्सीज हैं और बहुत सारे काम करते हैं जिसमें उनकी फिजिकल फिटनेस की बहुत जरूरत है। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर एक बंदा जो के रफली $5,000 अ मंथ बना रहा है और अगर उसको इस वक्त वो 40 का हम मान के चलें और वो अगले 40 में ही उसकी फर्ज कीजिए कि उसको इंजरी हो जाती है, तो उसका तकरीबन लाइफ टाइम का जो है $1.8 मिलियन की इनकम पोटेंशियल एट रिस्क है। ट्रक ड्राइवर्स, मेरे पास पिछले साल एक केस आया जिसमें WSIB की कवरेज उनके पास थी और उसकी डेफिनेशन इतनी माजिद भाई स्ट्रिक्ट है कि ऑन द जॉब पे वो पे करते हैं और ऑन द जॉब की डेफिनेशन ये निकली कि वो साहब किसी हाईवे पे ट्रक खराब होने की वजह से शायद टायर का कोई मसला था, तो उन्होंने पीछे वो कुछ वो पायलान से या वो कौन सी वो रखते हैं तक, वो रख रहे थे साहब हाईवे पे तो पीछे से उनको हिट कर दिया गया। WSIB ने वो क्लेम पे नहीं किया बिकॉज उनकी डेफिनेशन में ही वॉज नॉट ऑन द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब WSIB कहता है कि आप ट्रक में बैठे हो। इतना अब बंदा पूछे कि क्या वो जॉब पे नहीं था, क्या उसे ट्रक की मेंटेनेंस, गैस, ये वो, उसे ट्रक से उतरना नहीं है। तो ये चीजें हैं जिस वक्त हम इंश्योरेंस करके देते हैं। तो अब मैं इस वक्त अगर ये पॉलिसी करूं जिसमें एज अप टू 70 तक, 70 साल की एज तक अगर डिसेबिलिटी हो जाए, आपकी इनकम खतरे में पड़ गई। अभी मैंने अर्ज किया कि एक 40 इयर्स के बंदे को अगर चोट लगती है, और ये ग्राफ बता रहा है कि यंगर को, माजिद भाई हमारा डेटा इंश्योरेंस का बताता है कि यंगर पीपल हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग वर्क इंजरीज एज कंपेयर टू लेटर ऑन, बिकॉज वर्क, फिजिकल वर्क यंग पीपल ज्यादा करते हैं, ज्यादा उनकी इंजरीज होती हैं। तो 1.8 मिलियन तकरीबन 2 मिलियन डॉलर का इनकम पोटेंशियल जो है वो खतरे में है, और अगर मैं किसी को कवरेज करवा दूं कि अगर चोट लगे तो आपको इनकम सारी उम्र एज 70 तक $5,200 अ मंथ मिलते रहेंगे, और माजिद भाई उसकी कॉस्ट हो सिर्फ $110.
तो अमेजिंग,
तो क्या कोई दोस्त बहन भाई इसको लेने से ना करेगा? मेरा ख्याल है हमाकत होगी उसे, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वो पेनी वाइज और पाउंड फुलिश, इतना बड़ा रिस्क अगर हम लेके
सोचे
$100 में।
काम तो हमारा काम यही है फजल वदू साहब कि हम पैगाम और बता देते हैं उनको कि भाई साहब ये तरीका कार है, ये कॉस्ट करेगा आपको, ये आपके लिए बेहतर है। आज से 3 साल बाद अगर आपको होश आया तो आपने कहना है कि भाई मुझे वही प्लान चाहिए, हो सकता है 3 साल के बाद वो प्लान ना मिल सके, उसकी डबल कीमत हो जाए। तो जो कुछ भी है आपसे दरख्वास्त है कि आप एक दफा जनाब फजल वदूद साहब से कांटेक्ट करें, उनसे मिलें, उनसे बैठें, उनसे बातें करें, और उसके बाद फिर ये तो अभी टाइम की वक्त की कमी की वजह से सिर्फ एक उन्होंने बताया है, तो ऐसे कई और प्लान्स हैं इनके पास या इन्वेस्टमेंट के तरीके कार हैं जो ये आपको बता सकेंगे। भाई 27-28 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये गॉट ऑल द एक्सपीरियंस फजल वदूद साहब ऑफ इंश्योर प्रो। नंबर याद रखें इनका 9056075000 इनका फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू माजिद भाई, अल्लाह हाफिज जी।
अल्लाह हाफिज। जनाब फजल वदूद साहब ने बातचीत कराई, दो स्पॉन्सर्स के पैगाम दूंगा, प्रोग्राम में वापस आएंगे।
110 ग्रिल एंड मोर
लैब आ गया, एक और खर्चा ते स्यापा।
खर्चा नहीं है, दावत है, मजे मजे के खाने हैं, बिरयानीज हैं, रैप्स हैं, बिहारी रैप्स हैं, कॉम्बोज हैं, चिकन बिरयानी, नॉन वेजिटेबल मीट करीज आपको मिलते हैं, वेजिटेबल करीज है, नॉन्स में बहुत स्पेशल है, इंतहाई लजीज खाना, बेहतरीन कस्टमर सर्विस, यू मस्ट विजिट वंस।
110 ग्रिल एंड मोर 905-858-3003
मेरा बटन दब गया था, मगर शाहिद जी का बटन नहीं दबाता, मैंने कहा तुमकी तो माइक की जरूरत ही नहीं है, वो यहां से बोलेंगे तो मिस सागर में सुनाई दे रहा है सबको, तो वो क्या जरूरत पड़ी है हमें माइक का। भाई आप इनका माइक बंद कर दो भाई, वहां तक अच्छी सुरीली आवाज आ रही है इनकी। मार्खा वालो आपको आवाज आ रही है? अच्छी बात, ठीक है। मिस सागर वालो आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है, बस ठीक है, इनकी आवाज आ गई आपको। क्या करना चाहिए अब? मेरा ख्याल न्यूज की जानेब ले आना चाहिए। न्यूज की जानेब ले जाने के लिए आपको ये बताऊंगा कि ये दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फयाज कुरैशी। ऑल काइंड्स ऑफ डेंटल सर्विसेज ये देते हैं आपको, फैमिली डेंटिस्ट्री हो, ओरल सर्जरी हो, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हो, एंड सेडेशन डेंटिस्ट्री हो। ओ मजाइए, स्पीक योर ओन लैंग्वेज, जो सी भी लैंग्वेज है आप जाके इनसे ट्राई करें, आपकी सारी लैंग्वेज बोलते हैं ये कहते हैं। नो इंश्योरेंस नो प्रॉब्लम, आप पहुंचिए इनके पास। डॉक्टर साहब बे इंतहा नेक आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, एंड ही इज नॉट वन ऑफ दोज लालची पर्सन, ना ही इज ग्रीडी नहीं है, इज अ वेरी गुड पर्सन। जाके एक दफा मुलाकात जरूर करें हमारे और आपके डेंटिस्ट डॉक्टर फयाज कुरैशी। 905-232-5678-905-232-5678 इनका फोन नंबर है। रैमडम टीवी एंड प्राइसेस का क्विकली बता दूं, सुल्तान भाई यहां पर होते हैं, एंड क्या है 201 ही है ना इनका, 801 तो आमिर आपने ये देर से मुझे स्लाइड क्यों दिखाई? 801 आपको पता है, मुझे याद नहीं रहता। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, बोवेड एंड चिंकुजी के कॉर्नर पर, 9054502828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस का फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बात करता चलूं साहब, अगर आप या आपके घर में किसी के भी सुनने में कमी हो रही हो, कमी हो गई हो, तो आप शिराज से कांटेक्ट करें 4167928792, 4167928792 इनका फोन नंबर है। सब आज अफ्तार का टाइम जो है 7:21 पे होगा, 7:21 पे अफ्तार का टाइम होगा। ये टाइमिंग जो मैं दे रहा हूँ आपको इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो के टाइमिंग के मुताबिक है। अगर आप मिसागा या एचएक्स और दूसरे शहरों में रहते हो तो अपने करीबी मस्जिद का कैलेंडर लेके उससे आप रोजा खोलें, मगर ये टाइमिंग जो हम देते हैं इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो के नाम से हम देते हैं। और कल सुबह जो सहरी आपने रोकनी है वो 6:13 पे, 6:13 पे अगर आपका ताल्लुक अहले तशी से है तो साहब आपकी आज रोजा जो है 7:36 पे खुलेगा, और कल सुबह आपने रोजा बंद करना है 6:08 पर। हाँ जी, चले सही, वो जरा सिफारिश आ गई है तो मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो मूड नहीं था, मैंने आपसे कहा था मेरा तो कोई मूड नहीं है, मगर आपने सिफारिश आ गई, उन्होंने टेक्स्ट किया अपने बड़े बॉस को, तो बड़े बॉस अंदर आए थे, कहने के भाई इसको प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं है मेरे पास, बड़ा कीमती है रमजान वक्त। शाजिया मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं
आप? वालेकुम सलाम मलिक भाई, आप जैसे जो लोग हैं ना उनके लिए एक बाबा जी के पास एक औरत गई बेचारी, कहते हैं मजद भाई को पर्शियन में क्या कहते हैं,
पर्शियन में क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं मजद भाई को पर्शियन में क्या कहेंगे, तो बाबा जी तो बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा मजद भाई को किसी जुबान में कुछ नहीं कह सकते। ये आपका हाल है मजद भाई, आप जो है आपको कुछ नहीं किया जा सकता।
ओके जी।
हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आप देखिए आप कितने खुशनसीब हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं।
मगर मगर देखिए ये है बड़ा शरीफ बंदा,
हाँ बहुत शरीफ बंदा है, लेकिन खुशनसीब कितना है मेरे साथ काम कर रहे हैं,
देख ले
आप हैं मजद भाई। मैं सोचती हूँ अगर आप मेरे साथ काम ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते,
मशक्कत किसी को मारने का होता
है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप देखें आप अपने जो है ना आप अपनी खुशनसीबी के ऊपर रश किया करें,
रश करो
बहुत कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं।
देखिए ना कोशिश करने का तरीका है किसी के तरीका ठीक हो गया,
मैं भाई रोजे का बहुत असर हो गया आप, मैं भाई कल से आपने रोजे नहीं रखने। बिल्कुल, आपके 29 और मेरे 28। अच्छा जी, अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय फैशन पाकिस्तान। आपको पता ही है कि बहुत जबरदस्त ये एग्जीबिशन लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपको अपने ईद के कपड़े डिजाइनर खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं जाके, जाहिर है कि ईद के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो अभी आपको जो है अच्छी कीमत में मिल जाएंगे मार्च 17 को, और आप जाएं यहां पे हिल्टन गार्डन इंक में, 1870 मैथसन बुलेवार्ड मिसिसागा में ये है, और संडे का दिन होएगा तो जाहिर है कि आप ऑफिस वगैरह में या जो अपने कामों पे होते हैं वो भी नहीं होंगे, आपका छुट्टी का दिन होएगा तो आप जा सकते हैं, और काफी लंबा टाइम ये लोग खोलेंगे, सुबह 12 से लेकर रात 10 बजे तक, तो आप अपना रोजा खोल के भी जा सकते हैं। इसके अलावा जनाब हमारे दो फंड रेजर्स आ रहे हैं, एक तो मस्जिद इब्राहिम का आ रहा है फंड रेजर मार्च 22 को, तो प्लीज आपके जो भी कोई सदकात या खैरात आप करना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर अपना दिल खोल के हमारे साथ जुड़ें, ये इनका सेकंड फंड रेजर है, क्योंकि जाहिर है कि वो मस्जिद का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत फैसिलिटीज हैं, तो वो, और दूसरा जनाब इंडस जो हॉस्पिटल नेटवर्क है उनका एक फंड रेजर आ रहा है, और ये इट इज गोइंग टू बी ऑन मार्च 29। आपको पता ही है कि इंडस जो है हॉस्पिटल काफी एक्सपैंड कर रहा है, और बड़े अच्छे यहां पे लोग हैं, हम जो इनके डॉक्टर्स हैं उनके साथ आपकी बात भी करवाते हैं, और ये बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं बगैर किसी भेदभाव के, केर गोरा है काला है कौन है वो, बगैर उस चीज के जो है ये हेल्प करते हैं सबकी, तो आपने जरूर जो है इनके साथ जो है हमारे साथ जुड़ना है मार्च 29 को। और जनाब अगर आपको अच्छा खाना खाना है, आपका अगर दिल नहीं चाह रहा है बनाने का, तो नान एंड कबाब पे आप कॉल कर लें, अपना ऑर्डर डाल दें, इनका नंबर है 9052829797, और एंजॉय का मजा लें, दे आर लोकेटेड एट 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसेस सागर। ठीक है जनाब, अच्छा जी, खबरें हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहली जो खबर है कि आज ट्रूडो साहब की मुलाकात जो है अल्बर्टा की प्रीमियर जो है डैनियल स्मिथ उनके साथ हुई है, और मुद्दा वही था कि भई जो है ये कार्बन प्राइसिंग जो है इसको आप इंक्रीज ना करें ना लगाएं, ये बड़ा ही जो है अच्छा। इन दोनों की जब आपस में बात हुई है तो जो प्रीमियर स्मिथ हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो आप अपना लगाने लगे, आपने ये जो लगाया हुआ है कार्बन टैक्स और इसकी प्राइसेज हाई कब आप कर रहे हैं अप्रैल 1 से, ये ना करें। और भी बहुत सारे प्रीमियर्स जो हैं वो ये चाहते नहीं है कि आप इस तरह करें। ट्रूडो साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा जी कि अगर जो है ये लेवीज इसके ऊपर इंक्रीज हो रही हैं, यानी कि ये जो हम ये टैक्स लगा रहे हैं तो आपको रिबेट्स भी मिल रहे हैं, तो इसमें लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की मुलाकात जो है पहली दफा कैलगरी में आज हुई है फेस टू फेस। इनकी आखिरी मुलाकात जो थी लास्ट समर में हुई थी, हालांकि आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब पहले 3 हफ्ते पहले अभी अल्बर्टा में ही थे, एडमंटन में ये हाउसिंग अनाउंसमेंट कर रहे थे, फिर भी इनकी मुलाकात जो है ये डैनियल स्मिथ से नहीं हो सकी थी। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो यही रहा कि भाई कार्बन प्राइसिंग जो है उसके बारे में आप सोचें, लोग खुश नहीं है, उनके ऊपर बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है कार्बन टैक्स जो है ये जो लगा हुआ है इसकी प्राइस अब इंक्रीज कर जाएगी बाय $15 per ton, जिसका मतलब है कि $80 जो है वो नेक्स्ट मंथ से बढ़ जाएगा। तो लोग बेचारे
अप्रैल 1 से
तो वो जो है वो कह रहे हैं जी कि आप इसके ऊपर गौर करें। अच्छा, पीएम पॉलीवर जो है आप इसी सिलसिले में वो कह रहे हैं जी कि हम इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे ट्रूडो साहब के ऊपर, और हम बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ मिलके हम ये बात करेंगे। आपको पता है कि पीएम पॉलीवर साहब की भी मुलाकात हुई थी ट्रूडो साहब के साथ अभी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में अब हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे और हम चाहते हैं कि ये जो अप्रैल 1 को आप कार्बन टैक्स लगाना चाहते हैं आप इसको बढ़ाएं। आमिर, वो जो ट्रूडो साहब की तस्वीर है पीएम पॉलीवर साहब के साथ वो आप दिखाएं जरा, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हम जो है फाइनल वोट इसके ऊपर थर्सडे के दिन करेंगे, और उन्होंने आज बड़ी धमकी दी है लोगों को भी, उन्होंने कहा जी अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो और हम जो है ये इनके साथ बिल्कुल बात करेंगे, ये किसी की बात जो है ट्रूडो साहब नहीं सुन रहे हैं और ना तो लिबरल सुन रहे हैं ना तो एनडीपी सुन रहे हैं, लेकिन अब इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी हमारी बात ये लोग सुन सकेंगे, ये कॉमन सेंस बात है। और ये जो अप्रैल फूल्स हाइक है, क्योंकि ज़्यादा 1 अप्रैल को आपको पता ही है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है अप्रैल फूल मनाती है और उस दिन ये प्राइस हाइक करें, तो वो कह रहे हैं जी कि ये अप्रैल फूल्स हाइक जो है इसको हम बिल्कुल इसके खिलाफ है, ये लोग जो है ऑलरेडी बड़े पेंड हैं, इनकी बड़ी जो है वो तकलीफ बढ़ी हुई है तो इनको रिलीफ जो है मिलनी चाहिए। अच्छा, इसी के ऊपर जो है अब ये हुआ है कि कनाडा के जो एक वाहिद लिबरल प्रोविंशियल प्रीमियर हैं न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के एंड्रयू फ्यूरे, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है ट्रूडो साहब को इसी सिलसिले में, और उन्होंने कहा जी कि ये जो आप अपना कार्बन टैक्स हाइक करने लगे हैं नेक्स्ट मंथ में ये आप ना करें। एंड्रयू फ्यूरे जो है वो कहते हैं जी कि ये बहुत बड़ा जो है एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस यहां पर आ गया हुआ है, और क्यूबेक के अंदर जो है ये और बीसी के अंदर तो ये लॉज नहीं आए हुए हैं क्योंकि वो अपना प्रोविंशियल कार्बन टैक्स करते हैं, लेकिन जो ये जो लिबरल प्रोविंशियल प्रीमियर हैं एंड्रयू फ्यूरे साहब ये कह रहे हैं जी कि लोगों के ऊपर क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाएगा। आमिर, एंड्रयू फ्यूरे की जरा आप तस्वीर दिखाएं, लिबरल प्रोविंशियल प्रीमियर जो है उनकी, हाँ जी, तो वो कह रहे हैं जी कि ये कॉस्ट जो है बेतहाशा बढ़ जाएगी और ये जो कार्बन प्राइसिंग है ये $15 और आप बढ़ाने लगे हैं अप्रैल 1 से, तो ये $65 से बढ़ के $80 per ton हो जाएगी, तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, लोग जो है अपने फाइनेंशियल स्ट्रेन बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको जरा रोकने की जरूरत है, पॉज करने की जरूरत है जब तक कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ जाती है और इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे नहीं आ जाता है। तो आज ये बैक टू बैक जो है सारी खबरें ये कार्बन प्राइसिंग से ही जो है वो रिलेटेड है। अच्छा जनाब, ये जो हमारी पुलिसिंग है इसके ऊपर एक नया लॉ लाया जा रहा है जो कि अब नेक्स्ट मंथ से इसके ऊपर भी जो है वो आ जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये ओवरऑल किया जा रहा है ऑन्टेरियो का 34-year-old लॉ, और इसका नाम है कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट, और इसके अंदर जो अब पुलिस चीफ्स हैं उनके पास थोड़ी सी पावर्स ज्यादा होंगी। ये बहुत सारी कोई 30 मीटिंग्स होती रही हैं म्यूनिसपैलिटीज के बीच में, एडवोकेट्स, पुलिस सर्विसेज और बेशुमार मीटिंग्स के बाद 263 जो हैं सेक्शंस इसके अंदर क्रिएट किए गए हैं। ये जो पुराना पुलिस सर्विसेज एक्ट था इसके अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई ऑफेंस कर लेता था और उसको चार्ज किया जाता था और उसको जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता था और जेल टर्म नहीं दी जाती थी, नहीं सस्पेंड करके जेल टर्म नहीं दी जाती थी उस वक्त तक इसको सैलरी मिलती रहती थी। अच्छा, अब ये जो नया लॉ आया है इसमें एक तो पुलिस ऑफिसर्स को कोई अगर ये गलत काम करेंगे, कोई ऑफेंस करेंगे तो फौरन इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर इनको जेल टर्म नहीं भी मिलेगी तो भी इनको इनकी सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो है ये नई चीज, क्योंकि पुलिस वाला जो है वो ठंड रख के घर में बैठा रहता था, तो अब वो जो है ज्यादा मोहतात रहेगा कि भाई मैंने गलत तरीके से लोगों को जो है सजाएं नहीं देनी है। ओंटारियो एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस जो थी वो बड़े अरसे से कह रही थी कि उनको ज्यादा पावर्स दी जाए ताकि इन लोगों को सस्पेंड किया जाए जो कि पुलिसिंग के अंडर जो है अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। यूएस से जो आज सबसे बड़ी खबर है और जो आपको टिकटॉक पे आज बड़ा ट्रेंड नजर आता होगा, यूएस जो हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने टिकटॉक को बैन किया है, और आज ये जो बिल आया था उसमें 352 ने हाँ में जवाब दिया और 65 ने ना में जवाब दिया, और उन्होंने कहा जी कि ये जो टिकटॉक है जिसको के ओन करते हैं बेट डांस ओन्ड, ये जो वीडियो एप्लीकेशन चाइनीज बेस्ड टिकटॉक है इसको, तो वो उन्होंने उसके ऊपर कहा है जी कि इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी टिकटॉक पे, क्योंकि ये सही तरह से जो है वो काम नहीं कर रहा है अमेरिका में, और उसके ऊपर आपने आप पता ही आपको कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत एलिगेशंस लगाए थे कि ये शायद जो है वो स्पाइंग कर रहे हैं हमारे लिए। वो कहते हैं जी कि जितने भी यूएस के ऐप स्टोर्स होंगे फोन्स के उस पे से ये हट जाएगा बिल्कुल। बाइडन साहब जो है उन्होंने कहा जी कि जैसे ही ये आएगा बिल सेनेट से पास होकर मैं फौरन उसके ऊपर साइन कर दूंगा, लेकिन अब पता नहीं है कि सेनेट के अंदर ये पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी लीडर चक श्यूमर जो है उन्होंने अभी तक इसके ऊपर बात नहीं की है कि क्या वो सेनेट के अंदर इसके ऊपर टेबल इसको कर सकते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं दोनों ही कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि ये डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और हम ये इस तरह की चीज को कर नहीं सकते हैं इग्नोर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने अलबत्ता बड़ा इसका बुरा बनाया है, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा ही यूएस का बुलिंग बिहेवियर है और ये डिसरप्ट करता है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को, और ये जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर बड़ा डैमेजिंग है, वो 10 दफा सोचेंगे अमरीका में इन्वेस्ट करने का, और ये जो नॉर्मल इंटरनेशनल इकोनॉमिक और ट्रेड ऑर्डर होता है इसको भी ये जो है बड़ा खराब करेगा। तो ये बिल्कुल फेयर कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट है और ये इनको आके खुद ही बाइट करेगा यूएस को, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज कहा है। तो अब देखेंगे जनाब कि ये इस सिलसिले में अब क्या होता है। एक जज जो ओवरसी कर रहे थे जी जॉर्जिया का 2022 का जो केस ट्रंप साहब के अगेंस्ट इंटरफेरेंस का, उन्होंने आज काफी सारी राहत दी आज ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब जो थे उनको बहुत सारे केसेस में इस सिलसिले में इंडाइट किया गया था, उस सिलसिले में जो फुल्टन काउंटी सुपीरियर कोर्ट के जज हैं स्कॉट मैकेफी, उन्होंने इसमें से छह जो इनके ऊपर चार्जेस थे, छह काउंट्स जो थे उसके ऊपर जो है उनको डिसमिस कर दिया है, और प्रोसिक्यूटर्स को कहा है जी कि मैंने ये जो डिसमिस बेशक किए हैं तो अगर आप इसके ऊपर फर्दर चार्जेस लाना चाहते हैं तो आप लाएं, तो उसकी रीडिंग मैं करूंगा और देखूंगा कि उनको फिर से चार्ज इनको इस पे करना है कि नहीं करना। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि जो ट्रंप साहब के फोर क्रिमिनल केसेस हैं उनमें से इसमें इनमें से कुछ को डिसमिस किया गया है। ये जज जो है उन्होंने इसलिए इनको डिसमिस किया कि उन्होंने कहा जी कि प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उन्होंने इनफ डिटेल्स नहीं लाकर दी थी जो अलेज क्राइम्स थे इनके ट्रंप साहब के अगेंस्ट उसके अंदर, तो इसलिए इनको डिसमिस किया जा रहा है। पुतिन साहब ने आज जनाब बड़ी वार्निंग दी है और वेस्ट को, और उन्होंने कहा जी कि रशिया जो है वो टेक्निकली रेडी है न्यूक्लियर वॉर के लिए। आज वो बात कर रहे थे दो डिफरेंट जो न्यूज चैनल्स हैं, एक रूसिया वन टीवी और एक न्यूज एजेंसी रिया जो है उससे, क्योंकि आपको पता ही है कि आप रशिया के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं 15 से 17 के बीच में, और जाहिर है कि ये फिर से यही जीतेंगे पुतिन साहब फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स और हैन ही विल रिमेन इन पावर। तो उसी सिलसिले में आज इनके इंटरव्यूज कुछ हो रहे थे जिसमें उन्होंने कहा जी कि वेस्ट की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो हमें पुश कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की तरफ और हम बिल्कुल तैयार हैं। वो कह रहे हैं जी कि अगर यूएसए ने अपने ट्रुप्स हेल्प के लिए यूक्रेन में भेजे तो इसको हम समझेंगे कि ये एस्केलेशन जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है और हम इसको इंटरवेंशन ट्रीट करते हुए हम फिर जो है न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अभी तक तो हमने सोचा नहीं था इसके बारे में और हम ये यूज करना नहीं चाहते थे ऑप्शन, लेकिन अगर यूएस ने ऐसा किया तो हम ये करेंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि यूक्रेन जो है उसको जो है पार्ट ऑफ न्यू पोस्ट कोल्ड वॉर डिमार्केशन जो है ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी उसका मुद्दा ना बनाया जाए और जो है वो सीरियस टॉक्स की जाए। लेकिन यूएस कहता है जी कि पुटिन जो है ये यूक्रेन की वॉर को रोकने के लिए सीरियस ही नहीं है। तो अब दोनों तरफ से जो है बयान है, कुछ पता नहीं है कि कौन सीरियस है और कौन सीरियस नहीं है। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने आज बड़ी वार्निंग दी है और उन्होंने कहा जी कि ये वॉर जो है ये वर्स हो जाएगी यूक्रेन की अगर नेटो तक इसको फैला दिया गया, यानी कि अगर नेटो के जो कंट्रीज हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर उधर तक स्प्रेड कर दिया गया तो इस वॉर के अंदर बड़ी खराबी आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा जी कि मैं पुटिन साहब और जो है ज़ेलेंस्की साहब, यानी कि जो रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जैसे कि आपको पता ही है कि ज़ेलेंस्की साहब जो थे लास्ट वीक आए हुए थे इस्तांबुल में, और उस वक्त एर्दोगान साहब ने कहा था कि मैं यूक्रेन और रशिया का एक समिट कराने को तैयार हूं और आप दोनों के बीच में दोस्ती कराने को तैयार हूं। तो इन्होंने पहले भी एक पीस टॉक्स इनके बीच में करवाई थी समिट की जो थी 2022 में, तो वो कहते हैं हम फिर से करने को तैयार हैं। तो वो कहते हैं जी बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली हम पुटिन साहब को भी होस्ट करने को तैयार हैं। हमने आपको जैसे अभी बताया कि जी रशिया के अंदर मार्च 15 से 17 में इलेक्शंस हैं और खुद टर्की में भी मंथ के एंड पे इलेक्शंस हैं, तो पुटिन साहब ने कहा था जी कि हम मैं जा सकता हूं वहां पे, क्रेमलिन ने कहा था, और आज अर्दोगान साहब ने भी कहा जी कि हम उनको जो है होस्ट कर सकते हैं यहां पे पुटिन साहब को। उन्होंने कहा जी कि हमने आज तक यूक्रेन की मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट की है लेकिन जो मॉस्को के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं उसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। आज ये बात कर रहे थे, एक रमदान डिनर था फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ अंकरा में, उसमें ये बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि हम रेडी हैं बात करने के लिए, ये जो ब्लैक सी ग्रेन डील है जो कि हमने ब्रोकर करवाई थी मॉस्को और कीव के बीच में विद यूनाइटेड नेशंस, तो हम वो फिर से इस तरह का जो है कोई भी अगर इनिशिएटिव है तो लेने को तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करते हैं लेकिन अगर आप यूक्रेन की बात रशिया के बगैर करेंगे, माइनस रशिया करेंगे, तो फिर उन टॉक्स का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप उनको इन टॉक्स में बिठाएं। लेबनान जो है जी उसकी आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बू हबीब, उन्होंने कहा है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये शिकायत लेकर जाएंगे कि इसराइल ने जो ईस्ट ऑफ लेबनान में अर्लियर दिस वीक स्ट्राइक्स किए हैं जिसमें कि काफी लोग जख्मी और लोगों की डेथ्स हो गई हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, और ये जो वॉर है हमास की और गाजा की वॉर जो है ये अब बढ़ाई जा रही है लेबनान तक। इनको अब कहा गया है अबू हबीब साहब को कि आप जाके बात करेंगे, ये जो इसराइल ने अटैक्स किए हैं बेलबेक में और बीका वैली के अंदर, तो ये सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स हैं जो कि इन्होंने शुरू किए हुए हैं और मार्च 11th और 12th को इन्होंने टारगेट किया था सिविलियंस को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, जिसकी वजह से ये कैजुअल्टीज और इंजरीज आई थी जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हैं। इसराइल जो है वो उन्होंने कहा जी लेबनान ने कि ये एस्केलेट कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को और गाजा से बाहर लेकर आ रहा है और इसमें पूरे के पूरे रीजन को ड्रैग करना चाहता है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। गाजा की वॉर जब से शुरू हुई है आपको पता ही है कि लेबनान से जो हिजबुल्ला है उन्होंने भी काफी अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल जो है बजाय इसके कि हिजबुल्ला के साथ और उनके ऊपर अटैक करे वो जो है सिविलियंस के ऊपर कर रहा है, लेकिन इसराइल का कह रहा है जी कि हमारे जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने बीका वैली के अंदर हिजबुल्ला के टारगेट्स को टारगेट किया था। हिजबुल्ला कहता है और लेबनान कहता है कि नहीं इसने सिविलियंस को किया है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। इसके अलावा इसराइल ने इससे पहले भी फरवरी 26 को भी लेबनान के अंदर जो है अटैक्स किए थे जिसकी कि अब बहुत ज्यादा निंदा की गई है। ठीक है जी, और जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय यूनिक साइंस। यहां पे विक्रमजीत जी होते हैं, वो कहते हैं जी अपने घर का शक्ल जो है वो रोशन बनाएं और उनको कांटेक्ट कर लें अगर आपको जबरदस्त किस्म के साइन लगवाने हैं जिसमें कि माशाल्लाह और बिस्मिल्लाह भी अगर आप लगवाना चाहते हैं वो भी ये लगा के जाते हैं। इनका नंबर है 6475274482। और जनाब राजा बादशाह जी बहुत सारे आपके पैसे बचा सकते हैं, ऑल स्टेट में काम करते हैं और वो कहते हैं जी मैं आपको राइट कवरेज दूंगा, तो अगर आपको राइट कवरेज चाहिए तो राजा बादशाह जी को कॉल करें 8647290373 एंड ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट। यहां पे बहुत जबरदस्त अब रमदान के पैकेजेस जो है फैसल चट्टा साहब लेकर आए हैं अपने दोनों रेस्टोरेंट्स में, एक है 4141 डिक्सी रोड मिसेस सागा में, वहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं एट 9052323663 या के ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, उसका नंबर है 9052262294। तो या तो आपको सहूर करना है या तो आपको अफ्तार करना है या आपको वैसे ही अपने घर के लिए भी खाना लेकर जाना है तो आप फैसल चटा साहब को यहाँ पे रेस्टोरेंट में फोन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज बहुत ही जो है खुशी की वैसे तो ये खबर है पाकिस्तान के अंदर, और ये काफी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी इस वक्त कर रही है, अगर ये सच है, लेकिन झूठ हो नहीं सकती है, लेकिन इसके अंदर बड़ी अच्छी आज बात है। हुआ ये है कि आपको पता ही है कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा था कि जो जो मैं नाम भेजूंगा, जैसे चीफ सेक्रेटरी के या बाकियों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो एक एक ही नाम भेजा करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और वो उनको जो है माननी पड़ेगी। इसमें फिर बीच में यह पता चला कि गंडापुर साहब को इस्लामाबाद बुलाया गया है और उनको कहा है जी कि आप बात करें। बहरहाल पिशावर में अब कुछ मुलाकातें हुई हैं, और पिशावर में ये जो मुलाकातें हुई हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और उसमें इनके बाकी के जो लीडरान थे पीएमएलएन के वो भी थे। ये जो है सॉरी पिशावर में नहीं, ये इन्होंने जो है वो मिले हैं वहां पे पिंडी में, तो पिशावर में इन्होंने ये बातें कही थी, तो फिर ये इन्होंने कहा कि मैं पिंडी जाऊंगा उनसे मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब से। ये असल में मिलने आए थे इमरान खान साहब को, और अडियाला जेल से जब बाहर निकले तो इनसे जर्नलिस्टों ने पूछा कि क्या आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई है क्योंकि आप इधर आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरी मुलाकात हुई है और मैं बड़ा खुश हूं, मेरी मुलाकात जो शहबाज शरीफ के साहब के साथ थी ये पहली मुलाकात थी, उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें बातें की हैं, और मैंने उनसे कहा है कि ये जो नया पोलिटिकल सेटअप है अगर ये माइनस इमरान खान रहा तो ये ज्यादा नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये मेरे से वादा किया है कि मैं आने वाले दिनों में जरूर इमरान खान साहब से मिलना चाहूंगा, और मैं ये सारी जो अनसर्टेनिटी और ये सारी जो चीजें इनको सेटल करने की मैं कोशिश करूंगा। और इसीलिए आज जो है ये ट्विटर ट्रेंड बना हुआ था जिसमें कि अमीन गंडापुर ने कहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा मीडिया ने इनसे पूछा जी और किस बात पे आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो केपी में है, पब्लिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, और जो मुझे पैसे जो है हमारे हमें ट्रांसफर नहीं किए जा रहे, हमारे जो ड्यूज हैं बहुत ज्यादा ओवर ड्यू जो अब केपी के हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक जो चैलेंजेस आ गए हैं उसके ऊपर बात की। जो मीटिंग इनकी हुई है आपस में, इसमें और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल, मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड बॉर्डर्स अफेयर्स मुनीर अमीर मुकद्दम, और भी बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। तो ये आज वो कहते हैं जी बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई है एंड आई थिंक दिस कैन गो अ लॉन्ग वे। 2024 के अभी जो ये फरवरी 8 को इलेक्शन हुए हैं इसके ऊपर आज फिर से बहुत एतराज किया इमरान खान साहब ने, बहुत ही ब्रीफली इनफॉर्मली आज उनकी जो बातचीत मीडिया के साथ हुई है अडियाला जेल में, उसमें उन्होंने कहा जी कि आप कहते थे कि वोट की ताकत यूज करो, तो जो लोग थे उन्होंने वोट की ताकत यूज करते हुए अपना एक मैंडेट दिया था, लेकिन जो इस मुल्क में चेंज आनी थी वो वोट के थ्रू आनी थी, जो कि एक्सेप्ट नहीं की गई, लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, और जो जो मैं बातें करता था कि ये लोग ऐसा करेंगे, ये स्टील करेंगे मैंडेट, वो सारी की सारी मेरी प्रिडिक्शंस जो हैं वो सही साबित होती जा रही हैं। उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने पीटीआई के वर्कर्स को कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, ये जो रिगिंग हुई है इतनी मैसिव उसके खिलाफ करते रहे, लेकिन बिल्कुल पीसफुल वो रहेंगे, कोई खराबी नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं ये भी प्रिडिक्ट करता हूं कि अभी जो अप्रैल 2 को सेनेट के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि मेरे पे जो मेरे लॉयर्स के साथ मिलने पे बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है, जबकि मैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने केसेस के सिलसिले में मैं उनसे बात करूं, लेकिन मुझे मिलने जो है वो नहीं दिया जा रहा है। न्यूली अपॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं जी जो अताउल्ला तारर साहब, उन्होंने आज बहुत ज्यादा एतराज किया है पीटीआई और इमरान खान साहब पे। उन्होंने कहा जी कि ये जो है पीटीआई पाकिस्तान का जीडीपी प्लस स्टेटस जो है वो खराब करना चाहती है, उसको कॉन्स्टेंटली अटैक कर रही है। ये आज अपना पोर्टफोलियो मिलने के बाद पहली दफा जो है जर्नलिस्टों के साथ इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान का जीडीपी प्लस स्टेटस रिड्यूस होता है तो इसमें इन्फ्लेशन नीचे आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, लेकिन कुछ जो पॉलिटिशियंस और पार्टीज हैं वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए मुल्क का ना सोचते हुए बहुत खराब फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बड़े अफसोस की बात है कि पीटीआई जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है अब पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि बड़ा सैड है, और आईएमएफ को जो है उसको भी इन्होंने खत लिखा था कि पाकिस्तान को पैसे ना दो इमरान खान साहब ने, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और मुल्क की पॉलिसी है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अगर जो है शहबाज शरीफ साहब पर्सनली इंटरेस्ट ना लेते तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाता, और जो है ये भी जो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ बड़ा जुल्म जेल में हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, उनको एक किचन दिया हुआ है, एडिशनल रूम दिया है, उनको गैलरी दी है वॉक करने के लिए, और वैसे तो जो जेल का मैनुअल है वो एक मीटिंग पर वीक कर सकता है, हमने इनको इजाजत दी हुई है चार मीटिंग्स पर वीक की। और ये लोग जो है नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा इग्नोर करते हैं और अपना इंटरेस्ट पहले लगाते हैं। और मैं इन माय न्यू कैपेसिटी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं कोशिश करूंगा कि मैं मीडिया के लिए अच्छे काम करूं, मेरे दरवाजे हमेशा मीडिया के लिए खुले रहेंगे, और मैं ब्रिज का काम करूंगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया, लेकिन मीडिया को भी चाहिए कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाए। तो भाईजान आपको शायद पता नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी लेटर लिखा था IMF को एक दफा, शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा, जरा थोड़ा सा पढ़ लें पीछे का कुछ आपको पता चलेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और IMF जैसे अदारे जो हैं खतों के ऊपर जो हैं अपने डिसीजंस नहीं बनाते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज जो उनकी डील्स होती हैं उसके ऊपर वो बनाते हैं। तो मतलब ये हवा में नहीं बातें थी कि जी ये मतलब ये ताला तारण ने शादिया मलिक नु फोन करके क्या अज मजद जमाल ना आण वही फोन थे मतलब या मजद जमाल को, ये ऐसे ये बड़े अदारे जो होते हैं ये ऐसे काम नहीं करते, ये सेट सिस्टम्स उनके होते हैं, वो उन सिस्टम्स के थ्रू करते हैं, वो उन्होंने इमरान खान के साथ डील नहीं बनानी होती, उन्होंने कंट्रीज के साथ डील बनानी होती है, तो ये खतों का कुछ फायदा उनका होता नहीं है, तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आप ये कह रहे हैं जी कि मैं जो है अच्छा करूंगा मीडिया के लिए, तो मीडिया के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर उनको आजादी दे दो, फिर ये जो जर्नलिस्ट आपने उठाए हुए हैं वो असद तूर उठाया हुआ है, इमरान खान उठाया हुआ है, इमरान रियाज जो है उसको छोड़ दो फिर आप, अगर आप इतने अच्छे हो ना, आपके दरवाजे अगर खुले हैं जर्नलिस्टों के लिए और आप उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो तो वो छोड़ दो बेचारे उन जर्नलिस्टों को, क्यों पकड़ा हुआ है ना, छोड़ दो। अच्छा जनाब, IMF का मिशन जो है वो अब अपने सेकंड उसके ऊपर लेग में यहां पे आएगा, जिसमें कि ये बातचीत करेगा गवर्नमेंट के साथ $3 बिलियन का जो नया ट्रैशी देना है उसके लिए। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने दिया है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा जी कि जो है हमारा इनिशियल वर्क जो भी था और पाकिस्तान को जो जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था, जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे परफॉर्मेंस के, वो सारे के सारे पाकिस्तान ने पूरे किए हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो सेकंड ये रिव्यू करेंगे IMF वाले, और जो स्टाफ लेवल जो डील होगी ये बिल्कुल सही तरह से आगे चलेगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनिशियल जो इनकी डील है वो एक्सपायर हो रही है April 11 से, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वो इसके साथ हमारे साथ चलेंगे और नई डील जो है हमारे साथ बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 4-day रिव्यू के लिए IMF की टीम कल यानी कि थर्सडे को पाकिस्तान आ सकती है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने तो कोई डेट नहीं दी, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं कि ये यहां पर आ सकते हैं कल। पिशावर हाई कोर्ट जो है जी वो आज सुन रही थी पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स के ऊपर, जिसमें के कहा जा रहा था जी कि हमको रिजर्व सीट्स नहीं दी जा रही हैं। और ये सारी की सारी आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स जो थी बांट दी थी PPP और PMLN के बीच में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद जो काउंसिल है वो ये सीटें नहीं ले सकती है क्योंकि वो वायलेट करती है मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सबमिटिंग एज अ पार्टी, जो पार्टी एक होती है उसको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं। PTI ने ये कहा था पिशावर हाई कोर्ट में कि हमें एज अ पार्टी सिंबल ही नहीं दिया गया था, हमको जानबूझ के जो है इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की गई थी, तो इसलिए हम चैलेंज करते हैं ECP का ये डिसीजन और रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमने रिलायंस जो है इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बनाई है और हमारा हक है कि हमें दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस ये सीटें दी जाती हैं, यानी कि अगर किसी को 2/3 मिली है तो उतनी उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, किसी को अगर स्वीपिंग जो है वो विक्ट्री मिली है तो फिर सारी की सारी सीटें उसको मिलती हैं, तो एक कोटा जो होता है उसके अंदर ये रिजर्व सीट्स मिलती हैं। तो इसलिए यह पिटीशन जो थी पिशावर हाईकोर्ट में लाई गई थी। अब इस सिलसिले में जो पहली जो मीटिंग हुई थी, सॉरी जो पहली कॉल दी थी पिशावर हाईकोर्ट ने, उसमें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंजूर उस्मान आवान साहब नहीं आए थे, आज वो यहां पे आए थे और उन्होंने कहा जी कि जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ये नहीं दी जा सकती है, और जो है जो ECP का फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। बहरहाल जी इसके ऊपर काफी बहस के बाद हियरिंग जो है वो कल तक अब एडजर्न की गई है और अब देखा जाएगा कि ये कैसे इसके अंदर जो है वो प्रोविजंस लाई जाएंगी कि रिजर्व सीट्स को कैसे अकॉर्डिंग टू जो विक्ट्री है उसमें बांटा जाए। आज इस्लामाबाद में रावलपिंडी और पिशावर के अंदर हल्के अर्थक्वेक के झटके, जल्जले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए, और ये जो झटके हैं ज्यादा महसूस किए गए थे मर्दान, कोहाट, स्वात, लोअर दीन, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में। इसका जो रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड था 5.3 था, और इसका एपी सेंटर जो था हिंदू कुश रीजन ऑफ अफगानिस्तान था, और इसकी डेप्थ जो थी 130 किलोमीटर थी। इसमें अभी तक कुछ कोई लोगों के मरने की तो कोई खबरें नहीं आई हैं, तो लेकिन अगर आएंगी तो हम आपको अपडेट्स जो हैं वो दे सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो संमुक्ता किसान मोर्चा वाले हैं और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और दूसरी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बेतहाशा बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसको आज क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है इंतहाई उसकी रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं अगेंस्ट फार्मर्स, और उनका ये जो ब्रूटल रिप्रेशन है उसकी वजह से दो फार्मर्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, और इनको डर है कि और ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ होएंगी क्योंकि बेशुमार लोग इंजर्ड हुए थे। हुआ ये है कि जब इन्होंने अपना ये मोर्चा निकाला है भारत बंद का, ये कहते हुए कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा और मिनिमम जो प्राइस है वो सेट की जाए जो कि गवर्नमेंट ने पहले वादा किया था और नहीं किया, उस सिलसिले में जब ये इन्होंने फिर से पिछले महीने मोर्चा निकाला तो उसमें ज्ञान सिंह 79 इयर्स उनकी एज थी, उनको इतना तंग किया गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और उनकी डेथ हो गई फरवरी 16 को। इसके बाद जो शुभकरण सिंह 21 साल उनकी उम्र थी, जो कि किसान थे, जो कि ये मोर्चा निकाले हुए थे, इनके ऊपर तो पुलिस ने गोलियां चलाई बीजेपी रूल्ड हरियाणा में फरवरी 21 को, जिसकी वजह से ये यंग बच्चा जो है ये कनौरी बॉर्डर के ऊपर उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा फरवरी 13 को पुलिस ने टीयर गैस इनके ऊपर फेंकी ड्रोन्स के थ्रू शंभू और कनौरी बॉर्डर्स के ऊपर, और फिर इनके ऊपर पैलेट्स फायर किए और रबर बुलेट्स भी मारे, उसके बाद लाठी चार्ज किया जिसमें बेशुमार किसान जो है वो जख्मी हुए। तो एसकेएम और सीटीयू जो है उन्होंने इसको कंडेम किया और उन्होंने फौरन मांग की है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज जो है इमीडिएटली रेजिग्नेशन दें इतना ज्यादा फार्मर्स के ऊपर जुल्म करने के लिए। लेकिन अब ये होएगा कि नहीं होएगा, मोदी जी के बड़े राइट हैंड मैन हैं अमित शाह जी, तो वो अब करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। पायन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, इन पाकिस्तान एंड इंडिया, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन?
पूरी दुनिया में ऐसी हो रहा
है, ऐसे ही हो रहा है
पूरी दुनिया में ये।
चलो ठीक है जी, अभी नहीं कह के खुश हो जाने, सारी दुनिया में जुल्म हो रहा है हमारे प्योर तो क्या बात है। हम तो वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को कहते हैं, अल्लाह ताला दो बंदे दो फरिश्ते ना लगाओ सानू जुतियां मारन ते, 10-12 लगाओ ताकि जल्दी जल्दी जुतियां, टाइम ना वेस्ट हो, लाइनों में इतनी देर नहीं हम खड़े हो सकते, वैसे भी रमजान का महीना है जी, तो हमारा टाइम मत वेस्ट करो,
टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम वेस्ट जल्दी से ले आओ,
जल्दी जल्दी करो। अच्छा जी ठीक है। और जनाब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हमारी दीदी जो है ममता बैनर्जी, वो भी बड़ी भड़की हुई है। आपको पता ही है सीएए के जो ये मुद्दे जब से आए हुए हैं, सिटीजन ये जो एक्ट है तो इसके ऊपर सारे ही लोग बड़े भड़के हुए हैं। इन्होंने कहा जी कि इसके बाद अब फौरन ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी आएगा, मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगी। ये सारा कुछ जो है आपने असम में भी किया था, वहां पे डिटेंशन कैंप्स बनाए थे, लोगों को उसमें डाला था, मैं नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल में डिटेंशन कैंप्स डाल के इन लोगों बेचारों को जो है ये सीए के नाम पे वहां पे डाला जाए। वो कहते हैं जी ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं मोदी जी के, लोकसभा के इलेक्शन चूंकि आने वाले हैं इसलिए वो जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ममता बैनर्जी के साथ कुछ और कुछ ग्रुप्स ऑफ सिटीजन हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो कहा है जी कि ये जो सीए बीजेपी वाले लेकर आ रहे हैं ये हिंदुस्तान के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता है, ये लॉ जो है अंडरमाइन करेगा सेक्युलर बेसिस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इसके ऊपर बात करते हुए बीजेपी के जो लीडर हैं मनीष रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे लोग हैं ममता बैनर्जी टाइप्स और ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर टाइप्स अरविंद केजरीवाल, इनको पता ही नहीं है कि सीए क्या है। उन्होंने आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था जी कि ये जो है बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही है सीए आएगा तो बड़ी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो जॉब्स किधर हैं जो और लोग पहले ही रह रहे हैं जो मेजोरिटी में, उनके लिए जॉब्स नहीं है तो इन बेचारों के लिए जॉब्स कहां से आएंगी। उसके ऊपर भी एतराज करते हुए मनीष शंकर प्रसाद साहब ने कहा कि जनाब ये जो लोग बेचारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये बड़े अरसे से हिन्दुस्तान में रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल में रह रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी मॉरल या कल्चरल ड्यूटी नहीं है कि हम इनको सिटीजनशिप दें? इसके ऊपर फिर से ममता बैनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी और बाकी जो पार्टीज है उन्होंने कहा जी कि आप उनको सिटीजनशिप जरूर दो, लेकिन कुछ मुसलमान जो हैं उनको भी प्रोसिक्यूट किया की खतरा है, उनको भी वो भी छोड़ के इसलिए ये कंट्रीज आए थे, तो उनको साइड पे क्यों लगाया जा रहा है। बाला जी बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है जी नहीं उन्होंने नहीं मैं देना, इन्होंने खाली देना बाकी है जी ऐसे। और जनाब बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले रहे थे शाहरुख खान साहब, और उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वादा कर दिया अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम गौरी के साथ और अपने जो बच्चे हैं आर्यन सुहाना और एब्राहम के साथ। उन्होंने कहा जी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा
जी।
इतनी बड़ी जो है ये देखो जरा माजिद भाई उसने अनाउंसमेंट की है, ओ माय गॉड ये तो हमें पता ही नहीं था। नहीं पायन मतलब कि ये तुसी एंटरटेनमेंट छोड़ के रोटियां बनानियां सन। लेकिन उसका उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि जब मेरी फिल्में बैक टू बैक 4.5 साल पहले फेल हो रही थी तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था और मैं घर में बैठा कोई फिल्म नहीं कर रहा था, सिर्फ पिज्जाज बना रहा था और रोटियां बना रहा था और टाइम अपने बच्चों के साथ खर्च कर रहा था। उसके बाद कोविड आ गया, लेकिन फिर जब जवान आई तो मैं उसकी प्रोडक्शन के लिए मैंने जंप किया और मैंने टायरलेसली काम किया, एंड थैंक यू कि ये जो है वो बड़ी जबरदस्त रही ये फिल्म। एंड जनाब फातिमा फर्टिलाइजर्स वाले जो हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है आतिफ असलम के साथ और वो ला रहे हैं बड़ा ये जो क्लासिक मास्टरपीस है अल्लाहू, उसको वो कह रहे हैं जी एक नए तरीके से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं फॉर रमदान। वीडियो जो इसकी सामने आई है सोशल मीडिया पे उस पे सरसब्स फर्टिलाइजर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि सॉरी फातिमा फर्टिलाइजर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जो एसेंस ऑफ रमदान है जिसमें कि आप बिलीफ अपना रखते हैं अल्लाह के अंदर उसकी ब्लेसिंग्स के ऊपर और ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो विथ फेथ एंड कन्विक्शन हम ये जो है गाना नहीं ये जो कलाम है फिर से इसको बना के सामने लेकर आ रहे हैं और यही ये जो कलाम है ये रिफ्लेक्ट करेगा इसी इन्हीं सारी चीजों को। तापसी पन्नू क्या शादी कर सकती हैं मिथियास बो के साथ जिसके साथ वो पिछले 10 साल से डेट कर रही हैं। आपको पता ही है कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और जो है इनका बड़ा रोमांस जो है उसकी बात की जाती है, वो कहती है जी मैंने अपना रिलेशनशिप कभी छुपाया भी नहीं है, कभी उसको हिडन भी नहीं रखा, लेकिन बार 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 मुझसे पूछा जाता है कि जी तुम कब शादी कर रही हो कब शादी कर रही हो। आपको पता ही है कि तापसी पन्नू का अब जो है लेवल बहुत ही ऊपर चला गया क्योंकि अभी डंकी में ये शी केम ऑपोजिट जो है शाहरुख खान, तो उन्होंने कहा जी कि ये ना तो किसी से मोहब्बत करना इलीगल है ना तो मैं किसी पे चीट कर रही हूं, लेकिन मुझे बार बार पूछा रहा जाए जब मैं शादी करूंगी मैं करना चाहती हूं शादी, जब मैं करना चाहूंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है पान चलो जी ठीक है। और जनाब सऊदी अरेबिया का जो फुटबॉल क्लब है अल हिलाल उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उसने अपना जो राइवल है अल इत्तेहाद उसको 2-0 से जब हराया और रीच कर गया है ये एशियन चैंपियन लीग में। ये मैच जो था किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जद्दा के अंदर हो रहा था और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड बनाया था ये 27 विंस का रिकॉर्ड था, स्ट्रेट विंस का रिकॉर्ड था बाय द न्यू सेंट्स इन 2016 एंड 17 और जो वेल्श टीम थी फिर उसने लिया था इनसे एजेक्स टीम की से जो कि बड़े इंस्पायर्ड थे जोहन क्रियोफ से इन 1971-72। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं आज सऊदी अरेबिया के अल हिलाल क्लब ने तोड़े हैं क्योंकि उनकी बैक टू बैक 28 विंस रही हैं। और जनाब इसके अलावा सऊदी अरेबिया एक और बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है और वो ये है कि आपको पता ही है कि पहले अब उन्होंने गोल्फ में आए थे, अब फुटबॉल को भी बड़ा उन्होंने किया है, अब फीफा भी करने वाले हैं। आज उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है टेनिस वर्ल्ड को और उन्होंने कहा जी कि टेनिस को भी हम जो है वो खरीदना चाहते हैं और जो है उनकी ये अग्रीमेंट्स जो थी ये चल ही रही थी पीएनबी पेरिबा ओपन के बीच में इंडियन वेल्स में और उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ ये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि हम 2.5 से $3 बिलियन और इन्वेस्ट करेंगे टू इंक्रीज द रेवेन्यूज ऑफ द गेम और लाइसेंसिंग को लेने के लिए और स्पॉन्सरशिप्स के लिए और 100 मिलियन देंगे और इस गेम के अंदर और ज्यादा जान डालेंगे। तो वो कहते हैं जी कि हम होस्ट करना चाहते हैं WTA टूर फाइनल्स, तो उससे पहले जो है हम ये सारी डील बनाना चाहते हैं। ठीक है पायन $3 बिलियन
हो गया जी,
सानू पाकिस्तान में भी 3 बिलियन चाहिए पायन, व्हाट इज दिस। और जनाब पीसीबी ने आज अनाउंस किया है न्यूजीलैंड टीम का जो टूर होने वाला है पाकिस्तान का जिसमें कि वो 5 T20s खेलेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये टीम जो है 14 अप्रैल को आ रही है, इसमें जो फर्स्ट थ्री मैचेस हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे ऑन अप्रैल 18, 20th एंड 21st और उसके बाद लाहौर में अप्रैल 25th और 27th को खेले जाएंगे। सारे मैचेस 7 बजे शुरू होंगे। टिकट प्राइसेस को बहुत ही अफोर्डेबल रखा जाएगा ताकि फैंस जो है आके देख सके। और इससे पहले भी 3 दफा जो है ये न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है। ये आए थे पहले जनवरी 2023 में, उन्होंने 2 टेस्ट और 3 ODIs खेले थे। उसके बाद अप्रैल 2023 में ये आए थे, 10 white ball इन्होंने मैचेस खेले थे लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची में। और जनाब पीएसएल का जो मैच चल रहा था मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में, उसके बीच में बड़ी लड़ाई हो गई जी हमारा जो चाचा है इफ्तिखार अहमद और जेसन रॉय के बीच में। लेकिन जो है वसीम अकरम, उन्होंने बड़ा इस पर डांटा है इसको, जेसन रॉय को। उन्होंने कहा कि उसको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में है, ही नीड्स टू रिस्पेक्ट आवर प्लेयर्स एंड कल्चर। और ये गुस्सा किस बात पे हो रहा था, ये तो आउट हो गया, ये इसका खुद का मिस्टेक है, तो ये गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि रॉय ने बड़े गुस्से में अपना बैट और हेलमेट जो है ग्राउंड में दे मारा था, क्योंकि बड़ा ही क्रूशल मैच था, 186 को चेस करना था जब इनको आउट मिल गया था, तो उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड थे। और फिर इन्होंने बड़ी जो है बैड लैंग्वेज एक दूसरे ने जो है एक्सचेंज की इफ्तिखार ने और इसने, तो उसके ऊपर आज एतराज कर रहे थे वसीम अकरम साहब। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट द प्लेऑफ्स जो कि अब पीएसएल में आने वाले हैं। और फाइनल मैच ये खेला जाएगा बिटवीन मार्च 17 टू 19 एट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। मुल्तान सुल्तान जो है पिशावर जलमी के साथ फर्स्ट क्वालिफायर जो है मार्च 14 को खेलेंगे और जो विनर है फाइनल में जाएगा। लूजर जो है वो खेलेगा फर्स्ट एलिमिनेटर जो कि होएगा बिटवीन क्वेटा ग्लेडिएटर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मार्च 17 को। अलीम डार, रिचर्ड एलिंगवुड जो है वो एम्पायर रहेंगे, राशिद रियाज, फेज अफरीदी जो हैं वो एम्पायर रहेंगे थर्ड और फोर्थ मैचेस के लिए, रोशन महानामा जो हैं वो रेफरी रहेंगे। इसके अलावा एसन क्रिस गेफने ऑन फील्ड एम्पायर्स रहेंगे और सेकेंड जो एलिमिनेटर होएगा उसमें भी सारे रेफरीज और जो ये टीम प्लेइंग कंट्रोल टीम्स के जो हेड्स हैं वो भी मोर और लेस ऐसे ही रहेंगे। फाइनल मार्च 18 को कराची में खेला जाएगा।
ये थी हमारे आज की न्यूज एंड सब क्विकली बता चलो, आज मगरिब की अजान 7:21 पे होगी, तो आप रोजा अफ्तार 7:21 पे कर सकते हैं। और कल सुबह सुहूर का टाइम जो है वो है 6:13 पे। अगर आपका ताल्लुक फिका जाफरिया से है तो साहब आज आपका रोजा खोलने का टाइम 7:36 और कल सुबह सुहूर का आखिरी वक्त आपके लिए 6:08 पर। इसके साथ ही मैं बस आपको रीच करता हूं आप दूसरी स्टूडियो की जाने।
थैंक यू सो मच
एंड वहां पर आपकी मुलाकात कराएंगे हम जीशान से।
अपने वखरे ते सुथरे लवाजमात दे नाल बनाओ अफ्तार दा हर पकवान खास। एहो नहीं जी, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर विच कम कीमत ते पाओ सभी कुछ। रियल कैनेडियन सुपर स्टोर वालों रमजान दी मुबारकां।
यह फार्मेसी ते छेती नाल कीता गया एक असेसमेंट है। एक 2018 तो हुण तक 80,000 तो वध नर्सां दी भर्ती है। यह देखभाल है ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ontario.ca/yourhealth ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773 ਯਾਨੀ 6472903773।
ट्रैकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर।
ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
फैशन पाकिस्तान लाउंज लेकर आ रहे हैं मिसेस सागा में एक रोजा मल्टी डिजाइनर ईद एग्जीबिशन 24। 12 पाकिस्तानी डिजाइनर्स के लेटेस्ट एंड यूनिक आर्टिकल्स जो ईद पर बनाएंगे आपको सबसे मुनफरिद। इस बार 17 मार्च दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। प्लीज डू कम ओवर हिल्टन गार्डन इन 1870 मैथिसन बुलेवार्ड, मिसेस सागा। डोंट मिस इट।
खिदमत जिम्मेदारी से बढ़कर, ताजीम इज्जत से बढ़कर, मुस्कुराहट खुशी से बढ़कर, ताल्लुक रिश्ते से बढ़कर, क्योंकि इंडस अस्पताल से बढ़कर अपनी जकात दीजिए पहले से बढ़कर।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।